نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ان شاء اللہ تعالی آج ہم سورۃ النجم مکمل کریں گے اس کی ہم آج دیکھیں گے آیت نمبر 31 سے لے کے پوری سورۃ کو ان شاء اللہ تعالی ہم مکمل کریں گے دیکھتے ہیں تفسیر اللہ تعالی سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو صحیح سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یعنی ملکیت بھی اللہ کی ہے اور ان کے اوپر حق بھی اللہ کا ہے اختیار بھی اللہ کا ہے اور جب ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ ملکیت اللہ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ میرے پاس بھی ہے وہ بھی تو آسمان و زمین میں سے ہی کچھ چیزیں ہیں نا چاہے وہ مکان ہیں کپڑے ہیں گاڑیاں ہیں زیور ہے کچھ بھی ہے اصل میں یہ ملکیت کس کی ہے پھر اللہ کی ہم تو کہتے ہیں ہم مالک ہیں یہ تو پتہ تب چلتا ہے جب ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں ہم جا کے قبر میں پڑ جاتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل ملکیت کس کی تھی اسی طرح وارثوں کو اور ان کے وارثوں کو ملتا جائے گا اور آخر میں اصل وارث کون ہے تو اللہ ہی وارث ہے اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جب تک ہمارے پاس بھی اللہ کی ملکیت کیونکہ اس نے دیا ہوا ہے جیسے مثلا میں آپ کو اپنی کوئی چیز دے دیتی ہوں تھوڑی دیر استعمال کرنے کے لیے تو اصل مالک تو میں ہوں وہ تو آپ کو مجھے ہی ریٹرن کرنی ہوگی آپ سمجھنے شروع جائیں کہ میں مالک بن گئی ہوں تو یہ تو غلط ہوگا نا تو جتنی چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ ان سب کی ملکیت اللہ ہی کی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا تم کو اس میں سے خرچ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ جو رزق بھی ہمارے پاس ہے اصل وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے میری دی ہوئی چیز میں سے خرچ کر لو ہمیں غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم سب چیزوں کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں کہ میرا حق میری چیز میری محنت میرا میری قابلیت حالانکہ کچھ بھی تمہارے اپنی تھرو سے تمہیں نہیں ملا ہوا کہ تم قابل تھے قابلیت دی تو کس نے میں نے محنت کی محنت کرنے کے لیے آزاد یہ تو کس نے میں نے اپنا وقت لگایا وقت زندگی کی مہلت تمہیں دی تو کس نے کسی چیز کا بھی نہیں انسان اپنی ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہر چیز بلونگ کرتی ہے اللہ کو جو کچھ آسمانوں میں پھر کیا چیزیں آپ جتنی چیزوں کا آسمان صرف یہ آسمان نہ دیکھیں جتنے آسمان ہیں ان میں جتنا کچھ ہے سب اللہ ہی کا جتنے یونیورسز ہیں جتنے ستارے سیارے ہیں اور زمین پہ جو کچھ ہے چاہے وہ جانور ہیں حشرات ہے اور یا پتھر یا شجر یا حجر جو بھی کوئی چیز پہاڑ جو بھی کوئی چیز ہے سب اللہ ہی کی ہے تو پھر اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں کس سے مانگوں کچھ چاہیے تو میں کہاں جاؤں جو مالک ہے اس کے پاس ہی جائیں گے نا جو مالک نہیں ان سے کیوں مانگتے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا یہ سب اللہ تعالی نے پھر یہ کیوں قائم کیا ہے ان چیزوں کی پوزیشن وقتی طور پہ کیوں تمہیں دے دی ہے یہ سب کیوں بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے اور اس کے بعد تمہیں بدلہ دے اس کا جس نے برا کیا اس کے لیے برا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور جس نے اچھا کیا اس کو بھلائی کے ساتھ بدلہ دے دے یعنی جیسا تمہارا عمل ہو ویسا ہی تمہیں بدلہ مل جائے جو کرو گے وہ بھرو گے آسانی فارمولا ہے اور یہ الذین احسنوا بالحسنى یہ کون ہے جو اچھا کرتے ہیں بھلائی کرتے ہیں جن کو نیک بدلہ ملے گا बेसिकली कहा जा सकता है नेक लोग कौन से हैं, नेक लोग की तारीफ क्या है। हम नेक किसी को समझते रहे लेकिन अल्लाह के नजदीक कौन है जो नेक है। आगे जो लफ्ज आ रहा है अल्लादीना, अल्लादीना जो होता है ना इसम मौसूल होता है यानी कनेक्टिंग नाउन होता है। इसकी जब भी आप अल्लादीना से एक आयत शुरू होती भी देखें तो याद रखें वो पीछे से उसका कनेक्शन है, यानी पीछे क्या बात हो रही है, जो नेक है अल्लादीना अहसनू बिल हुस्ना, वो नेक कौन लोग हैं, वो लोग हैं यानी अब उनकी तारीफ की जा रही है, अब उनकी उनके औसाफ बयान किए जा रहे हैं कि वो कैसे होते हैं नेक लोग। वो उनके कोई सर पे सींग नहीं लगे होते, ना ही वो कोई चोगे पहन के और हाथों में तस्बीहें लेके एक तरफ पड़े रहते हैं, ना ही वो ऐसे हैं कि वो जंगलों में निकल गए होते हैं और बस दुनिया से अलग होके अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं। अल्लाह के नज़दीक नेक लोग कौन है जिनको हुस्ना मिलेगी, भलाई मिलेगी, अच्छा बदला मिलेगा। अब ये हम सबके लिए एक बहुत गौर करने की चीज़ है कि कौन से लोग हैं, हम भी उनमें से शामिल होना चाहते हैं जो लोग अच्छा बदला पाएंगे, जो अल्लाह के हाँ नेक हैं, जिनको अल्लाह नेक समझता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वो कौन से लोग हैं, उनकी पहली क्वालिटी क्या है। हम अपने जहन में लाते हैं तो हम सोचते हैं वो लोग होंगे जो ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं, ये तो हम कई दफा कुरान में पढ़ चुके हैं कि ये करते हैं काम। यहां पे खास तौर पे इंपॉर्टेंस इस बात की है कि यहां पे ये बयान किया कि किन चीजों से बचते हैं, यहां पे करने वाली बातें नहीं बयान की गई, बचने वाली बातें बयान की गई। इससे पता चलता है, एक बात समझ लें कि नेकी, हम समझते हैं नेकी क्या है, नमाज रोजा ये करके उसके बाद साथ साथ अपना भी धंधा जारी रखा जो अपनी बुराइयां कर रहे हैं, इधर नमाज पढ़ के आए उधर रिश्वत खाने बैठ गए, इधर नमाज पढ़ के आए उधर बेहयाई देखने बैठ गए, इधर कुरान पढ़ लिया उधर और ऐसी फोहिश बातें करनी शुरू कर दी। तो ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। कुछ जगहों पे आपने देखा जैसे सूरतुल मोमिनून, कितनी सारी औसाफ आपने देखी ना जो वाकई ईमान वाले हैं, जो अल्लाह के नजदीक नेक लोग हैं, मुत्तकीन की आपने बहुत सारी सिफात देखी, सूरह फुरकान में इबादुर्रहमान की बहुत सारी सिफात आपने देखी, क्या क्या करते हैं वो, किन चीज़ों से बचते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ये पता चलता है कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं कि नेकी करना और बुराई से बचना, ये साथ चलेंगी तो फिर कोई नेक बनेगा। ऐसे नहीं होगा कि नेकी करते जाए साथ बुराइयां भी करते जाए, नेकी करते जाए साथ कबीरा गुनाह भी करते जाए, ये नहीं हो सकता। आधा तीतर आधा बटेर नहीं अल्लाह को चाहिए, नेकी भी करो गुनाह से भी बचो, दोनों को लेके चले। हम कैसे लेके चलते हैं, हम नेकी भी करते जाते हैं साथ बड़े बड़े गुनाह भी साथ जारी रखते हैं। कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, हम नेकी तो कर रहे हैं ना, और नेकी किस चीज को समझते हैं, बस नमाज पढ़ ली तो नेक हो गए, हाँ जुमरा करके आ गए तो नेक हो गए, लेकिन गुनाह से बचना भी नेकी है, यही यहां पर बताया जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट अपना नेकी का जरा सा हम दुरुस्त कर लें, सिर्फ सज्दे पे सज्दे देने को या कुरान खोल के हम बैठ जाते हैं इस वक्त, इसको नहीं नेकी समझे, बल्कि गुनाहों से बचना भी जरूरी है, इसको भी माइंड में रखें। समझ आ गई बात। अब अच्छा, अब हम देखते हैं, बिल्कुल मुख्तसर बता दिया गया हमें कि कौन लोग हैं जिनको अच्छी जजा मिलेगी। हम तो सोच रहे थे बहुत लंबी लिस्ट होगी, ये तो एक लाइन में बात कर दी गई। क्या अल्लादीना यजतनीबूना कबायर अल इस्म, वो जो इज्तनाब करते हैं, इज्तनाब का मतलब पहलू तही करना, बचना, यानी उसके करीब भी नहीं जाते। करना तो दूर की बात है, करीब भी नहीं जाते। इज्तनाब करना क्या होता है, ये नहीं कहा गया वो नहीं करते, ये नहीं कहा गया, इज्तनाब करते हैं। आप वर्ड पे गौर करें, किसी जगह गंदगी पड़ी हो तो हम कहें, एक बंदा आम बंदा होगा वो कहेगा चलो इसके पास से गुजर जाता हूं कोई बात नहीं, मुझे लगेगी तो नहीं ना, साथ साथ से चला जाता हूं। दूसरा जो बहुत सफाई पसंद होगा ना वो कहेगा नहीं नहीं करीब से भी गुजरूंगा, हो सकता है मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए, कोई गंदी चीज छू ना जाए, वो रास्ता बदल लेगा। ये होता है इज्तनाब करना, ये बचना नहीं, मेरे पास भी नहीं जाना, दूसरे बंदे को फर्क नहीं पड़ा, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं। मजा ही, तो एक होता है गुनाह करना, कबीरा गुनाह करना, और एक है कबीरा गुनाह से इजतनाब करना, बचना, बच बच के चलना। अब सबसे पहले तो हम ये बात को समझ लें कि कबीरा गुनाह क्या होते हैं। अब कबीरा गुनाह की डेफिनेशन पहले भी आपको बताई भी है मैंने कि कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं, मुख्तसर आज उसको एक रिवाइज कर लेते हैं जहन में। नंबर वन, जिस गुनाह के बारे में हलाकत या बर्बादी जैसे अल्फाज हों, कुरान में या हदीस में। देखिए कुरान में ये जो जितनी मैं आपको बातें बताऊंगी ना, इधर कुरान में आई हो या हदीस में हो, हलाकत और बर्बादी के अल्फाज हों, ठीक है। नंबर टू, जिस गुनाह के बारे में जहन्नुम की वईद हो। मैंने एक पहले आपको क्या बता दी, हलाकत बर्बादी, जैसे वईल कहा गया, वईल लिकुल्ली हुमजा तिल्लु मजा, ठीक है ना। इसी तरह जिसके बारे में आग की बात आ गई हो कि फिर नार होगा वो। इसी तरह जिस गुनाह के बारे में लानत के अल्फाज आ गए, चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी हो कि मसलन रिश्वत लेने देने वाले पे, मिसाल के तौर पे जो आपको बताया था टैटूज बनाना और आईब्रोज ये जो बनाती हैं औरतें, ये सारे लानत वाले काम है ना, तो इनमें तो सही हदीस में है, इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी हुई इन लोगों के ऊपर। लानत मतलब अल्लाह की रहमत से दूर है ये। अब जो अल्लाह की रहमत से ही दूर हो गया उसका क्या रह गया बताएं। हम तो मांगते हैं अल्लाह अपनी रहमत में हमें शामिल फरमा ले, खुद खुल्लम खुल्ला अल्लाह की रहमत में से दूर हुए में और लानत में आए में। अच्छा चले, तो लानत के अल्फाज कुरान में, और फिर झूठों पे अल्लाह की लानत है ये कुरान में है। झूठ कितना हमारे लिए आम मामूली बात है ना, ये कबायर की बात हो रही है, ठीक है। हम खुद नहीं कैटेगराइज कर सकते कि जी ये कबीरा, नहीं नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो सभी करते हैं तो ये तो कोई बात नहीं है, अल्लाह माफ कर देगा ना। कबायर, कबायर बड़े गुनाह है, बड़े गुनाह जो तौबा के बगैर माफ नहीं होते, ठीक है। फिर नंबर थ्री बात, दो बातें आपको, तीन बातें बता दी है ना, चौथी बात ये कि अल्लाह ताला की नाराजगी की बात आई हो कि अल्लाह उसको पाक नहीं करेगा, अल्लाह उसके ऊपर नजर रहमत नहीं करेगा, अल्लाह ताला फलां से कलाम नहीं फरमाएगा, ये हदीस में आया हो मसलन अल्फाज, तो मसलन एहसान जताने वाले के बारे में आता है, झूठी कसम खा के माल बेचने वाले के बारे में आता है, अल्लाह ताला माफ फरमाए हमें, तो इनसे अल्लाह ताला नहीं कलाम करेगा या इनके ऊपर नजर रहमत नहीं करेगा, या तो ये कबीरा गुनाह हो गया। फिर जिस गुनाह के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अबू दाऊद की हदीस है, जिसने औरत को उसके शौहर के खिलाफ उकसाया, भड़काया, वो हम में से नहीं है। ये काम तो बहुत सारी सहेलियां करती हैं, और बाज सब नहीं, बाज माएं भी करती हैं, ठीक है। आदमी को बीवी के खिलाफ या बीवी को शौहर के खिलाफ भड़काती हैं, अपनी बेटी को भड़का देती हैं उसके शौहर के खिलाफ। इसी तरह जिस हदीस में ये वईद हो के फलां गुना दीन की जड़ काटने वाला है, जाहिर है वो कबीरा ही है ना, फिर जिससे दीन की जड़ ही कट जाए। सो मसलन बोझ और हसद के बारे में ये कहा गया कि ये मूंड देने वाली है, वो बेजाह के बारे में कहा गया, ये कुर्सी की चाहत के मुझे कोई ओहदा मिल जाए, मुझे ग्रुप इंचार्ज बना दिया जाए वरना मैं तो नाराज हूं, मुझे वो फलाना मुझे कोई काम दिया जाए, मुझे आप ट्रेजरर बनाए, मुझे प्रेसिडेंट बनाए, मुझे फलान चीज बनाए, उसका काम खराब हो गया। तीर की जड़ काटने वाले हैं ये काम। जिस गुनाह के बारे में कह दिया जाए कि फलान जन्नत में दाखिल नहीं होगा, मसलन मिसाल के साथ एक एक मिसाल भी आपको देती जाती है ताकि आसानी हो समझने में। मसलन कतअ रहमी करने वाले के बारे में मुस्लिम में हदीस है कि जन्नत में नहीं दाखिल होगा। जिसके बारे में आ जाए, जिस गुनाह के बारे में कुफर के अल्फाज आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर मुस्लिम की हदीस है कि दो बातें ऐसी हैं जो कुफर में से हैं, नसब का ताना देना, तू क्या है, तू मोची, तू नाई, तू फलां, तू ये, हमें पता है तुम क्या चीज होते हो और तुम्हारी तो जात ऐसी और तुम्हारी तो जात वैसी, और मैयत पे नोहा करना, ये दो खसलतें ऐसी हैं, ये क्या समझ गए आप। यानी ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ वईद, इसी तरह अजाब अलीम की, अजाब अजीम की, इसी तरह ऐसी बातें, ऐसी कोई बात कह दी गई हो कि मसलन है हलाकत की या अल्लाह ताला के शदीद गुस्से की, तो वो भी कबीरा गुना बन जाती है। ठीक है, तो जैसे हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि दोनों कबीरा और सगीरा गुना कौन से हैं, क्योंकि यहां पे कहा गया उनसे इज्तनाब करना है, तो इज्तनाब करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि कौन से हैं। इसी तरह कबायर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास गुनाहों का तो फरमा दिया ये कबायर में है, और उनमें सात तो बड़े बड़े गुनाह बता दिए, बड़े, जिसमें शिर्क भी आता है, जादू भी आता है, जिसमें मासूम बोली भाली औरतों के ऊपर तोहमत लगाना भी आता है कि बेचारी मासूम औरत थी उसके ऊपर तोहमत लगा दी हमने, तो इसको ऐसे देखा है, ये कर दिया, और क्या कि ये तो सात ऐसे गुनाह जो कि यानी बिल्कुल सबा मुबिकात जिनको कहा गया, यतीम का माल खाना, जादू करना, ये वगैरह। इसी तरह 70 के करीब गुनाह हैं जिनको इमाम ज़हबी की किताब है अल कबायर, अगर आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है इसकी, अगर आपको मिल सके आप इसको लेके उसको पढ़ें कि कबायर कौन सी है, क्योंकि कबायर में तो मैंने जाना नहीं, क्योंकि अच्छा कबायर में भी कुछ अकबरुल कबायर है जिनका मैंने आपको बता दिया सबा मुबिकात, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबायर के बारे में कि सबसे बड़ा गुनाह ना मैं तुम्हें बता दूं, अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालदैन की नाफरमानी करना और झूठी गवाही देना, तो ये सबा मुबिकात है, सॉरी ये तीन ऐसे गुनाह हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बड़े गुनाह हैं। कबायर में भी कुछ बड़े, उनमें भी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो बहुत बड़े गुनाहों की हैं। और कौन से कबायर आप समझते हैं जो, जिनका आपको कुछ याद है, जिनका कुरान में जिक्र है या हदीस में जिक्र है, कुछ कुछ आपको बता दूं जो कि हमारे यहाँ काफी कॉमन है, काफी कॉमन है। मसलन हसब नसब पे फखर करना, अब इनकी मैं पूरी पूरी हदीसों में नहीं जा सकती क्योंकि अभी इस वक्त टाइम नहीं है। गाना बजाना, बेटे का अपने बाप से नफरत करना, और पड़ोसी को अजियत देना, उरियां लिबास पहनना, नंगा लिबास, औरतों का ऐसा गैर शरी बनाओ सिंगार करना जिसका वो डिस्प्ले भी करती हैं, जिसको बनाओ सिंगार करती हैं वो गैर शरी हो गया ना जब इसको डिस्प्ले किया ना महरमों के सामने। मर्दों का टखनों से नीचे अपना कपड़ा, औरतें तो लटकाएं, औरतों का तो अच्छा है कि वो लटकाएं, लेकिन मर्द नहीं लटका सकते, वो उनका वो करना। फिर सूद है, फिर नाप तोल में कमी बेशी है, फिर हराम की कमाई है, फिर कर्ज अदा ना करना है, फिर औरतों को मीरास से महरूम कर देना है, फिर भत्ता वसूल करना है, फिर अपने गुनाहों पे इसरार करना है। आपको पता है कि जब इंसान कोई सगीरा गुनाह भी करता है लेकिन फिर उसके ऊपर इसरार करता है तो वो भी कबीरा हो जाता है, यानी उसके ऊपर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, उसी को बार बार किए जा रहे हैं, तो वो फिर कबीरा हो जाता है। तो वो ऐसे गुनाह भी आ जाते। फिर जखीरा अंदोजी करना, कत्ल करना किसी को नाहक, खुदकुशी कर लेना, औलाद को कत्ल कर देना, और इवन लोगों को हथियार से खौफजदा करना, जैसे लोग ऐसे ही बाज दफा जस्ट फॉर फन सेक हथियारों से लोगों को खौफजदा करते हैं ना, ऐसे निकाल के दूसरों को दिखाते हैं कि, और वो दूसरा बेचारा डर जाता है, फिर वो कहते हैं नहीं तो हम तो मजाक कर रहे थे। वालदैन को गाली देना, बीवी के हकूक अदा ना करना आदमी के लिए, ये भी है, और औरत का बिला वजह तलाक मांगना, कोई रीजन ही नहीं है ऐसे ही। फिर ऐसा जो हलाला कराए वो भी, और औरत का बगैर हिजाब के घर से निकलना, इसी तरह बीवी के साथ दुबर के रास्ते अपना काम करना, मुसलमान को काफिर कहना, हदिया दे के वापस ले लेना, तो ये, और गुनाहों को मामूली समझना, ये भी। फजूल खर्ची तबजीर करना, यानी ना हक जगह के ऊपर जो गलत जगह है वहां पे बेतहाशा खर्च करना, एक तो इसराफ होता है ना, एक तबजीर होता है, यानी एक नाहक जगह है वहां पे वैसे ही नहीं खर्च करना चाहिए, वहां पे भी उड़ाना, किसी को हकीर जानना, धोखा, चोरी, जुआ, अमले कौमे लूत, शराब नोशी, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कबीरा गुनाह में आती, इनकी कहीं ना कहीं कोई वईद है। अल्लाहु अकबर। और फिर नमाज छोड़ना या जकात छोड़ना या रोजा छोड़ना या हज छोड़ना बगैर किसी वजह के, ऐसे ही जबकि आपके पास ज्यादा राह भी है, छोड़ देना, ये सब कबीरा गुनाह में आते हैं। रियाकारी करना, जुल्म करना, लानते भेजना जो कि बहुत ही आम है, ये सब कबीरा गुनाहों के अंदर आ जाते हैं। अब अगर हम देखें तो कबीरा गुनाहों की, जैसे मैंने आपको बताया 70 के करीब गुनाह गिनवाए गए हैं, अभी तो मैंने आपको थोड़े बताए हैं ये, लेकिन ज़्यादातर कोशिश की है कि वो मैं आपको बता दूं जो कि यानी बहुत कॉमन हैं, आप इर्द गिर्द देखते भी हैं और हम में से भी कोई इनमें मुलव्वस हो सकता है, तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये जो लानत वाला है वो मैंने ऐसे आपको बताया ना कि इंसान बैठे बैठे ऐसे ही, लानत है इन लोगों पे, लानत है फलाने पे, बैठे बैठे ही बस, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने फरमाया किसी के ऊपर, मोमिन के ऊपर लानत करने वाला ऐसे है जैसे उसको कत्ल करने के बराबर है, ये ऐसा है गुना। और औरतों तो जहन्नुम में ज्यादा होंगी इसलिए कि बहुत लानत करती हैं, ना किसी से ताल्लुक ना कुछ है, ना वास्ता ना कुछ, बस लानत करने बैठ गए। एहसान कितना हम जताते हैं, अल्लाह अकबर। तो ये हैं कबायर, इनसे इज्तनाब करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमा दे। वल फवाहिश, और किससे इज्तनाब करते हैं, फवाहिश से, बेहयाई की बातों से। एक हदीस आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम में है कि एक रोज अपने खुतबे में फरमाया, आग में जाने वाले 5 किस्म के लोग हैं। पहले वो जाहिल जिनको हलाल हराम में कोई तमीज नहीं, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, इतने जाहिल है, दूसरों के पीछे आंखें बंद करके चलते रहते हैं। और अहलो अयाल और मालो मनाल तक से बेपरवाह है। दूसरा वो खाइन जिसे मामूली सी चीज की जरूरत महसूस होती तो खयानत करने लगता है। तीसरा वो शख्स जो तेरे अहल और माल में तुझे धोखा देने वाला है। फिर आपने बखील या झूठे आदमी का जिक्र फरमाया। और पांचवा वो शख्स जो फोहश गो हो और गालियां बकने वाला हो। समझ आ गई, फोहश गोई क्या होती है, गालियां में भी फोहश गोई होती है, और ये तुम बताने की जरूरत ही नहीं है कि किस किस किस्म की गालियां हैं फोहश गोई पे मबनी, कि हमारे माशरों में तो और यहाँ पे भी अस्तग़फिरुल्लाह ऐसी सी गालियां हैं कि इंसान शर्मा जाए सुन के भी कि उनके क्या मतलब है, लेकिन लोग इतने आम आम उनको कह देते हैं, ऐसे आम तौर पे बोल देते हैं कि जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, कोई भी माँ की बहन की इसकी गालियां बहुत कॉमन है, और छोटी छोटी बातों पर ये फोहश गोई है। फवाहिश कौन से गुनाह होते हैं, जिस जो बेहयाई के पर मबनी होते हैं, और इसमें सिर्फ जुबान की बात नहीं है बल्कि कानों से भी बेहयाई की चीजें सुनी जाती हैं, आंखों से भी बेहयाई को देखा जाता है, और बोला भी जाता है जुबान से बेहयाई को, हाथों से भी बेहयाई के काम किए जाते हैं, और शर्मगाह से तो जिना जो है वो सबसे ही बड़ी बेहयाई है, उसके फरमाया उसके करीब भी ना जाओ, उसके भी फरमाया करीब भी ना जाओ। अच्छा, आप फहाशी नहीं करनी है या फहाशी के भी करीब भी नहीं जाना। फहाशी पहले बता दूं कि हराम भी है कि नहीं है, आज तो बेहयाई इतनी कॉमन हो गई है कि बेहयाई बेहयाई नहीं लगती हमें, हम उसको कहते हैं तो मॉडर्निज्म है, आप इतने दकियानूसी हो गए मौलवियों की बातें करने लगे, ये तो मौलवाइन हो गई है, ये तो मौलवी हो गया, ये बेहयाई आज इतनी कॉमन हो गई है हमारे माशरों के अंदर, इसको बड़े जबरदस्त किस्म के नाम दिए जाते हैं। क्या क्या नाम है आप अपने जरा ग्रुप्स में डिस्कस करिएगा ना, ब्रॉड माइंडेडनेस और मॉडर्निज्म और सेलिब्रिटीज और स्टार्स और फलां और ये कहा जाता है जो बुरा बेहयाई करने वाले होते हैं, जो बेहयाई की चीजें होती हैं, जो बेहयाई के काम होते हैं, वो आज हमारे लिए आर्ट है और कई एंटरटेनमेंट के नाम है उसके। तो बेहयाई को तो बेहयाई समझा ही नहीं जाता, उनके बड़े खूबसूरत नाम रख लेने से क्या बेहयाई खत्म हो जाएगी? अप टू डेट होना क्या रहा, जैसे जमाना चल रहा है वैसे ही चलो, जिधर को हवा का रुख है उधर को ही चलो, इसके अगेंस्ट नहीं हमने चलना। अच्छा बेहयाई क्या हराम है, छोटा गुनाह है कि बड़ा है? जब अल्लाह ताला ने इसको कबायर के साथ कर दिया ना, जब फरमा दिया कि कबायर से और बेहयाई से, बेहयाई इटसेल्फ कबीरा है लेकिन उसको स्पेशली अलग करके भी बताया गया, इसलिए कि इसकी अहमियत है कि इससे बचना है, क्योंकि काम खराब होते ही बेहयाई से हैं, फिर आगे से आगे कबीरा गुनाहों पे चली जाती हैं चीजें, पहले छोटी बेहयाई फिर उससे आगे आगे। तो क्या ये हराम है, आपने कहीं पढ़ा है कि ये हराम है? अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम में आयत नंबर 151 है, इसमें फरमाया, आप देख लीजिएगा आठवां पारा खोल के आपने पढ़ा हुआ, कुल तालो कह दीजिए इधर आओ, मैं तुम्हें अतलू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊं कि अल्लाह ने तुम्हारे पर क्या हराम किया। उसमें शिर्क आ गया, उसमें वालदैन के साथ कि तुम ना शरीक करो उसके साथ कुछ भी, और वालदैन के साथ एहसान करो, अपनी औलादों को ना कत्ल करो, और वला तक़रबुल फवाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, फवाहिश के पास ना जाना चाहे वो खुली हो या छुपी हो। खुली छुपी एक तो जाहिरी माना भी, खुली छुपी मतलब है कि चाहे खुल्लम खुल्ला हो तब भी फहाशी के साथ नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, खुल्लम खुल्ला हो रही है तो जायज हो गई है तब भी नहीं, और अगर पोशीदा हो छुप छुप के करें, आजकल तो इतनी ज्यादा फहाशी इजीली एक्सेसिबल हो गई है कि कोई अपने घर के अंदर बैठे हुए, अपने बेडरूम में बैठे हुए, अपने बाथरूम में बैठे हुए फहाशी को एक्सेस कर सकता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से छुप के लोगों के सामने शराफत, और जब कमरों में क्या हो रहा है और क्या घर की चार दीवारी के अंदर क्या चीजें पक रही हैं वो किसी को नहीं पता, बाहर हिजाब भी है, ये भी है, सब है। आपको पता, पिछले दिनों मैंने एक इस पे देखी, एक प्रोग्राम था, तो हैरत की बात है, उसके अंदर उन्होंने बताया था, मेरे पास वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कि उन्होंने बताया कि मर्द कितने मर्दों की रेशो है, इट वाज अराउंड 70% उन्होंने जिनका सर्वे किया, जो ये इतराफ कर रहे थे कि हाँ हमारा अपनी बीवी के अलावा कहीं और भी कोई हमारा ताल्लुक है, चक्कर है। इसी तरह उन्होंने ये भी बताया, अपने मुल्क की बात कर रही हूँ, उन्होंने ये भी बताया कि औरतों का भी सर्वे किया गया, और हैरत अंगेज बात ये है कि बहुत सारी औरतें भी अपनी शादीशुदा होने के बावजूद बाहर कहीं और किसी से ताल्लुक रखती हैं। इसके अलावा मर्दों के साथ और औरतों के साथ ताल्लुक, वो इसके अलावा है, बहुत डरा देने वाली ये बात थी। और ये इसको हम सोचते हैं कि पोशीदा है तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो क्या फर्क पड़ा जब एक आदमी और एक औरत, यानी आफ्टर आवर्स में, तो रिस्पेक्टेबल आवर्स नहीं है, रात है, ये है, आफ्टर आवर्स में एक दूसरे के साथ मैसेजिंग शुरू करते हैं तो वहां से बात शुरू हो जाती है, और उसके बाद आगे से आगे सिलसिला फिर चलता रहता, और अब आसान इतना है, आप पूरे कमरे में लोग भरे हुए हैं, उनके बीच में बैठ के भी किसी ऐसे से ताल्लुक रख सकते हैं जो जायज नहीं है, वहां भी टेक्सटिंग हो सकती है, वहां पे भी ऐसी चीज देखी जा सकती है और पढ़ी जा सकती है जो सही नहीं है। तो जाहिर और पोशीदा हर तरह की फहाशी के करीब भी नहीं जाना। इस आयत में क्या है, ये नहीं कहा गया हराम है फहाशी, कहा गया वला तकरबुल फवाहिशा। मैं इसमें से आपको पढ़ के बता रही हूं, मा जहरा मिनहा व मा बतना, जाहरी और बातनी। अच्छा, दूसरे ये क्या जाहरी और बातनी से मतलब ये भी है कि कोई छोटी बेहयाई या बड़ी बेहयाई, यानी कि ओ जिना तो नहीं ना कर रहे, कोई बात नहीं, किसी से बातें ही कर रहे हैं ना, मेरा मियां मेरे पर तवज्जो नहीं देता लिहाजा मैं किसी और के साथ बातचीत शुरू कर दूं, नहीं किसी और में दिलचस्पी शुरू कर दूं, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे जस्ट फन सेक कर रहे हैं, जस्ट फन सेक, मैं कोई सीरियस थोड़ी हूं, जस्ट फन सेक भी नहीं हो सकती, ये बेहयाई है। और बेहयाई कहां कहां है, कोई चीज को देखना, प्रोनोग्राफी को देखना, सबसे ज्यादा प्रोनोग्राफी इस्तग़फिरुल्लाह हमारे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर देखी जाती है। आप अगर स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख लें, कभी आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पे सबसे ज्यादा वॉच होती है, तो आप अपना सर पकड़ लेंगे कि हमारे मुसलमानों में। और उस प्रोग्राम में उन्होंने ये भी बताया कि बहुत ही दुख की बात है कि औरतें भी कम नहीं है, औरतें भी ये चीजें देखती हैं, सिर्फ मर्दों को नहीं कह सकते। फिर बेहयाई की सिर्फ चीज देखना ही नहीं, लिखी भी, किसी एक ने लिख दी, उसने कहा मैंने ये थोड़ी कहा नहीं पढ़नी, ना पढ़े कोई, नहीं, जिसने लिखी, जिसने बेची, जिसने अपने स्टोर पे रखी, बेहयाई के प्रोग्राम जितने चैनल्स पे चल रहे हो, ये सब उसके अंदर आ जाते हैं फहाशी में, जो फरोख्त कर रहे हैं, चाहे वो फिल्में हैं, ड्रामे हैं, चाहे वो नेट के थ्रू कुछ देखा जा रहा है, चाहे कोई मैगजीन्स हैं, चाहे कोई ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ सुनी जा रही हैं। अल्लाहु अकबर। एक वक्त था कि कहा जाता था कि जो तवायफ का के कोठे पे गया और वहां पे उसने उसका गाना सुना, ये बहुत बुरा आदमी है, उसकी अच्छी रेपुटेशन नहीं होती थी, उसको आप क्या कहेंगे जो स्क्रीन के ऊपर देख रहा हो। और तवायफ को तो कहीं देखना होगा तो वो जरा दूर होगी, जहां पे कैमरा एक एक उस पे उसके जाके फोकस करके क्लोज अप्स लिए जा रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे, वो फहाशी नहीं है? घर घर मुजरे हो रहे हैं, वो फहाशी नहीं है? जो टीवी के ऊपर, फोन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर ऐसी औरतों को देख रहे हैं, वो फहाशी नहीं है क्या? फिर और आपने फहाशी की डेफिनेशन देखनी है ना, अब मेरे मुझे माजरत करिएगा, मैं जो हक बात है, किसी को अगर भी बुरी लग रही हो तो जो हक बात है वो बयान करनी जरूरी है। हमें कम से कम आईना देखना चाहिए कि हम कुरान को खत्म करने के करीब हैं, लेकिन अभी तक अगर हमारी गुफ्तगू, अगर हमारा देखना, अगर हमारा सुनना, अगर हमारी मजलिसें पाक नहीं हुई हैं, तो हम नेकों में नहीं है, सॉरी, हम नेकोकारों में नहीं है। कबायर से भी बचो और फहाशी से भी बचो। आज फहाशी कोई कुछ समझता ही नहीं, हम नमाज तो पढ़ते हैं ना, बस यही बड़ा एहसान हो गया, तो बड़ी बात है। उसके अलावा हम जो मर्जी करते रहे वो हमारी अपनी जिंदगी है। और अगर आपने फहाशी देखनी हो तो आप देखें जो आजकल हमारे इश्तिहारात चलते हैं, जो बिल बोर्ड्स के ऊपर होता है, आप एक न्यूयॉर्क सिटी का चक्कर लगा लेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि फहाशी क्या चीज होती है। न्यूयॉर्क सिटी का क्या कहना, मेरी नजर से एक अखबार गुजरा जब मैं पाकिस्तान में थी, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले दिनों की बात है, और मुझे, मैं यानी आपको बयान ही नहीं कर सकती कि जो फ्रंट पेज पे मैंने इश्तिहार देखा, मुझे नहीं पता वो किस चीज का था, लेकिन जिस तरह से एक औरत ने पोज किया हुआ था कि मैं औरत होते हुए मेरी आंखें शर्म से झुक गईं कि ये किस किस्म की तस्वीर है, ये किस किस्म का पोज है, हम क्या बताना चाहते हैं, ये क्या फहाशी नहीं है? हम किस यानी गंदगी की किस डेप्थ तक पहुंच चुके हैं, कि आज हमारे नजदीक बुराई बुराई नहीं रह गई। और ये अखबार की बात है, इसके अलावा जो स्क्रीन्स पे होता है वो सब जानते हैं। कौन सी फिल्में हैं जो पाक फिल्में हैं, कौन सी इंडियन फिल्म होगी जो पाक फिल्म होगी, कौन सी ड्रामे मुझे नहीं पता कि कितने हद तक क्या है, क्या अब उनका चल रहा है, मगर जितना भी मैं सुनती हूं कोई होगा शायद जो कि पुराने जमाने में ही हुआ करते थे शायद, अब तो पता नहीं कि क्या हालात है, मगर कोई होगा जो कोई पाक साफ होगा, क्या हालात है उनमें, कैसे वो ऐसे रिलेशनशिप्स दिखाते हैं जो कि जायज नहीं होते, और वो उन कितने अच्छे नामों के साथ उनको दिखाते हैं, शादीशुदा लोगों के आउट ऑफ वेडलॉक रिलेशनशिप्स दिखाते हैं, लेकिन हम बैठे देख रहे होते हैं क्योंकि हमें सबक बहुत लेना है। देखिए सबक मिलता है इससे, हम सबक सीख रहे हैं इससे, कब तक ये सबक सीखते रहेंगे हम, और कब ये सबक खत्म होगा हमारा लेना? क्या कुरान आपको कोई सबक नहीं देता? उसके लिए तो हमारे पास टाइम नहीं, उन चीजों के लिए टाइम है, हम वहां से सबक लेंगे। और वो सबक ऐसा है कि बचपन से आज तक हमारा खत्म ही नहीं हुआ। मैं बहुत ओपन बातें कर रही हूं, लेकिन ये आईना देखना जरूरी है। हम इसमें किसी और को ना देखें, अपने आप को देखें। फिर और फहाशी का को देखना हो हमने, अगर वह ढूंढनी मुश्किल नहीं है आजकल, तो हम किसी शादी पे चले जाएं, किसी भी शादी पे चले जाएं और वहां देखें कि फहाशी के हमें क्या क्या नमूने नजर आते हैं। बेपर्दा औरतें और ऐसे हालात के अंदर कि यानी दुल्हन तो क्या सजी होगी, हर औरत दुल्हन बनी होती है और हर औरत एक मैसेज देख रही होती है कि कोई मेरे मुकाबले का तो सामने आ जाए, वो चाहे बूढ़ी है या जवान है, हर एक अपनी जगह पे ऐसे होती कि आज मैंने जैसे कोई यानी सबसे बड़ा कोई अवार्ड लेना है ब्यूटी का, और मर्द भी वहीं पे हैं औरतें भी वहीं पे, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क तो नहीं ना पड़ता, ये तो बेहयाई नहीं है ना, ये तो ऐन हया है कि जवान बच्चियों से लेकर बूढ़ी बूढ़ी औरतों तक, बूढ़ा कौन है आजकल, तो सभी जवान है, चाहे वो जवान बच्चियों की मां हो, चाहे वो पोतों नवासों वाली हो, सभी जवान है। हम उनके अंदर भी हम ऐसे हैं, हम अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं कि अपनी जीनत को डिस्प्ले ना करो, वो कहाँ है हमारे सामने हुक्म, वो तो कुरान घर में शेल्फ में पड़ा हुआ है, क्लास खत्म हो गई, अब हमारी जिंदगियों में क्लास का कोई ताल्लुक नहीं है, यहां हमारी जो मर्जी होगी वो हम करेंगे, हम वो करते हैं जो हमारा जी चाहता है। उसके अलावा आप वहां पे नाच गाना म्यूजिक सब कुछ देखें, आपको लगेगा ही नहीं कि मुसलमानों की शादी, क्या ये फहाशी नहीं है? उन गानों के बोल सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये इन मजलिसों में अल्लाह का कितना जिक्र हो रहा है वो भी आपको खुद अंदाजा होगा, जो उन मजलिसों को कर रहे हैं वो तो गुनाहगार होते ही हैं, जो वहां पे बैठे रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरह निसा में आप देख लीजिएगा, अल्लाह ताला ने फरमाया जहां पे अल्लाह ताला की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा हो और तुम उस मजलिस में बैठे हो तो वहां से उठ जाओ, और अगर तुम नहीं उठते तो तुम उन्हीं में से हो, तो उनको बुरा ना कहें जो ये करते हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो भी उतना ही बुरा है। हम कहते हैं क्यों, वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज ना हो, अल्लाह बेशक नाराज हो जाए उसका क्या फर्क पड़ता है, उसे क्या फर्क पड़ता है ना, अल्लाह से तो बाद में तौबा कर लेंगे, ये नाराज ना हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह इतना गैरत वाला है। एक दफा एक सहाबी की बात हुई थी तो किसी ने कहा वो बहुत गैरत वाले हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें सबसे ज्यादा गैरत वाला हूं और अल्लाह सबसे ज्यादा गैरत वाला है, अल्लाह को बहुत गैरत आती है, हमें तो शर्म नहीं आती, लेकिन अल्लाह बहुत बाहया है, शर्म वाला है, गैरत वाला है। ये मुझे बताएं, अगर हम समझते हैं ये सारी, चलो मैं बातें शायद मैं बहुत एक्सट्रीम की बात कर रही हूँ, मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूँ तो ये बातें मैं सारी गलत कर रही हूँ, लेकिन जहाँ हम सब लोगों को इनविटेशन देते हैं पे आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अगर आज होते तो हम उनको अपनी शादियों पे इनवाइट कर सकते थे? इसी बात से सोच लें, वो तो क्या कोई सहाबी ही होते, उनको इनवाइट कर सकते थे? इसका जवाब अगर आप दे सकते हैं तो खुद ही देख लें कि भाई क्या क्या हम आज कर रहे हैं। इस हाल हुलिये में उनके सामने जा सकते थे जो हमारे हाल हुलिये होते हैं? असल में दीन किसी और खाने में और हमारी दुनिया की चीजें किसी और खाने में है, और ये सब चीजें हमें यहां से निकल के भूल जाती हैं। आप सोचें कि सहाबा जो थे ना वो ताबईन से कहते थे, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुल कुरून जो है ना, बेहतरीन जमानों में बेहतरीन जमाना मेरा है, और इसके बाद जो मेरे बाद वाला, और उसके बाद जो मेरे बाद वाला। ताबईन का जमाना भी अच्छे जमानों में से था, यानी ऐसे खैर के जमानों में से था जब खैर थी। तो सहाबा ताबईन से कहते हैं तुम गुनाह करने में करते हो और उसको हल्का समझते हो, और हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इन गुनाहों को हलाक करने वाले गुनाह समझा करते थे। या अल्लाह, वो ताबईन को देख के कहते हैं कि तुम जो गुनाह करते हो इसे तुम हल्का समझते हो और हम इनको भी हलाक करने वाले गुनाह समझते थे। तो वो जो उस जमाने के गुनाह थे लोग करते थे उनको वो इतना बड़ा समझते, वो तो आज आ जाए तो वो तो पहचानेंगे नहीं ये मुसलमान है। इसके बावजूद हम समझते हैं हमसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगारी कोई नहीं, हमसे ज्यादा अच्छा कौन है? तो ये सारे फहाशी के काम हैं, अगर इसके बावजूद, ये सब बताने के बावजूद अगर हम ये समझते हैं कि नहीं नहीं ये सब बेऐन नेकी के काम है और बड़े अच्छे काम, और ये इतने बड़े गुनाह नहीं है जितने कि आपने बना लिए, तो वो इस आयत को देख लें फिर, जो मैंने आपको सूरह नाम की 151 आयत नोट कर लें आप, उसको आपने देखना, और ये आयत तो आपके सामने ही है। जो समझते हैं कि फहाशी कोई चीज, और शायद कुछ लोग समझते हो कि ये फहाशी में नहीं है, वो अभी देख लें। मैंने आपको जो एक बात कह दी कि अगर ये बेहयाई नहीं है तो फिर और बेहयाई क्या होती है? क्योंकि बुराई, जैसे मैंने बताया कि इतनी कॉमन हो चुकी है कि बुराई की ना तो कराहत रह गई है, ना पसंदीदगी तो दूर की बात है, ना पसंद तो कोई करता ही नहीं, उसको बुराई समझते भी नहीं है, ये नहीं समझते कि ये बुराई है। कम से कम बुराई समझना तो शुरू करें, बचना तो बाद की बात है, समझे तो सही, इतराफ तो करें। असल में इतराफ इसलिए नहीं करते कि अगर समझ लिया ना कि ये बुरा है तो होगा क्या अगला स्टेप? फिर गिल्ट होगी कि मैं बुराई कर रही हूं, तो इसलिए उसको अच्छे नाम दे दिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इज्तनाब किससे करना है? फहाशी के साथ से गुजरना है, करीब से भी गुजरना है, उन मजलिसों में बैठना है जो फहाशी की है, या वहां नहीं बैठना चाहिए, मसलिहतन बैठे रहना चाहिए, खाने के दो लुकमे खाने के लिए बैठे रहना चाहिए, खाना खा के जाएंगे ना। हक तो यही है, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं इस पे माजरत नहीं कर सकती, हमें अपने आप को बदलना है, जबकि हम अब कुरान के अब अल्हम्दुलिल्लाह 27वें पारे पर पहुंच गए। अगर कुरान पढ़ते जाएं और काम हमारे वही हैं जो कुरान पाक के पहले दिन सूरह फातिहा पे थे, तो क्या बदला फिर? आगे आप पढ़ेंगे, ये अल्लाह ताला ने फिर ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि वो उस गधे की तरह जिसने बस बोझ उठाया हुआ किताबों का, उसको नहीं पता इनमें क्या है क्या। तो इल्म हम इसलिए नहीं ले रहे ताकि बस बड़ी बड़ी बातें कर लें, दर्स दे दिया करें कहीं जाके और लोग कहें वाह 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 भाई क्या बात है। इल्म इसलिए हम ले रहे हैं ताकि हम इस पर अमल कर सके, हमारी जन्नत आसान हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ये क्या अल्लाह ताला इस तरह राजी होगा कि हमने नोट्स तो भर भर के रख ली हैं اور بس اسی کے اوپر فخر کیے جا رہے ہیں کہ ہم کلاسوں میں کلاسیں لے رہے ہیں، لیکن ہمارے عمل اس سے برعکس ہے، اور ہم ایک بیڈ اگزامپل ہیں لوگوں کے لیے کہ دیکھو دین والے بھی تو ایسے ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے بھی تو ایسے کرتے ہیں نا، تو یہ جائز ہی ہوگا جو یہ بھی کر رہے ہیں، ان کو تو سمجھ ہے نا، اگر یہ ناجائز ہوتا تو یہ نہ آتے، یہ نہ ایسا کرتے، ہم کیسی اگزامپلس بن رہے ہیں پھر، ہم لوگوں کے لیے ان چیزوں کو انڈورس کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو، یہ بتا رہے ہیں اپنے عمل سے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ کرنی جائز ہیں، دیکھو ہم نے قرآن پڑھا بھی ہوا ہے لیکن ہم بھی تو کر رہے ہیں نا، تم بھی کرتے رہو۔ کب معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی؟ کیا اس طرح ختم ہو سکتی ہیں کہ لوگ کورس کرتے رہے اور گریجویشن کرتے رہے؟ کیا ایسے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں؟ یا ایک دن برائی کے لیے اٹھنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا انف از انف ناؤ، بس دیٹس اٹ، نو مور، کم از کم میں نہیں شامل ہوں اس کے اندر، آپ نے کرنا ہے تو آپ کریں، آپ اللہ کے ہاں خود جواب دے ہوں گے، میں نہیں شامل ہو رہی، یہ بولنے کی جرت تو کر لیں۔ تو وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، فواہش سے اجتناب کرتے ہیں، کسی چیز پہ نظر پڑ جائے تو یہ نہیں کرتے کہ اسی کو دیکھتے رہیں، اپنی نظریں ہٹا لیتے ہیں، کسی گندی تصویر سے، کسی گندی ویب سائٹ سے، کسی میگزین سے، کہیں ایسے لطیفے سننے سے، بے شرمی کی باتوں سے، ان سب سے، اور بے شرمی کی گالیاں، جو گالیاں وہ ساری بے حیائی ہیں نا، فحاشی ہیں سب، ان سب سے، الا لمم، سوائے لمم کے۔ اب یہاں پہ ایک چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی ہے، لمم، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی چھوٹ مل سکتی ہے، کس کو چھوٹ مل سکتی ہے، یعنی نیک وہ ہے جو ان دو چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، دیکھ لیں آپ یہاں پہ کہ فواہش سے اجتناب کرنے کا حکم ہے، اور صرف یہ ہے کہ وہ لمم اگر کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور لمم میں کیا آتا ہے، چھوٹے گناہ۔ لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ چھوٹے گناہوں پر بھی اگر انسان اصرار کرتا ہے، کرے چلا جاتا ہے، کرے چلا جاتا ہے، تو وہ بھی پھر بڑے بن جاتے ہیں، اور چھوٹے گناہوں کو بھی اگر انسان یہ سوچ کے کرتا رہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، تو وہ بھی پھر بڑے بن جاتا ہے۔ تو لمم کیا ہے؟ نمبر ون، یہ وہ گناہ جس پہ دنیا میں نہ کوئی حد ہے، نہ اس پر آخرت میں کوئی عذاب کی وعید ہے، وہ یہ پھر لمم ہو گیا، ذکر کوئی حد کا نہیں ہے، آخرت میں کوئی عذاب کا نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا یہ گناہ کبیرہ، یعنی آپ کبائر سے ڈفرنس سوچ لینا چھوٹے گناہ۔ اور لمم میں کون سا ہے؟ نمبر ٹو، وہ گناہ جس کا انسان بار بار، جس کو نہ کرے، عادت نہ بنا لے، جیسے میں نے بتایا نا صغیرہ گناہ بھی کبیرہ کب بن جاتے ہیں، جب انسان بار 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 کرتا رہتا ہے۔ تو میں آپ کو حدیث بھی آج بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک، جیسے چھوٹی چھوٹی تنکی آپ جمع کرتے رہے تو ایک ڈھیر بن جاتا ہے نا، کتنی اس میں آگ لگائیں تو کتنی بڑی بن جائے گی، اسی طرح صغیرہ گناہوں کو فرمایا کہ جب ان کو بھی کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں تو وہ بھی ایک ڈھیر بن جائیں گے۔ اچھا، پھر نمبر تھری، لمم کا اور ایک معنی کیا ہے؟ کہ بندہ کوئی گناہ کرے پھر دوبارہ نہ کرے، یعنی اب ہو گیا میرے سے، ایک دفعہ غلطی سے ہو گیا، اس کے بعد پھر اتنی انسان توبہ کرے، اتنی انسان اس کے اوپر پچھتائے، اتنا انسان کو اس کے اوپر رنج ہو، وہ بھی لمم ہے۔ یعنی کوئی پہلے گناہ کرتا تھا، چاہے کئی دفعہ کر لیا یا ایک دفعہ کر لیا، پھر توبہ کر لی اللہ سے، کہ اللہ نہیں پتا تھا اس وقت، نہیں جانتی تھی، جاہل تھی، جو بھی، چاہے کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، چاہے فواہش میں سے ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر انسان اس کے بعد سچی توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا چانس دیا انسان کو کہ تم بھی نیک بن سکتے ہو، اگر پاسٹ میں ہو گیا ہے تو ابھی پلٹ آؤ۔ یہ کیا بات ہوتی ہے کہ ہم چونکہ پہلے کرتے رہے تو اب ہم کیسے چھوڑیں؟ یہاں اب لوگ کہیں گے، لوگ، اس نے تو پہلے کیا تھا، اب بڑی نیک بن کے بیٹھ گئی۔ نہیں، آج بھی توبہ کر لو، اگر آج پتا چلا ہے تو تمہارے پاس بھی چانس ہے۔ تو لمم میں پھر وہ بھی آ جاتے ہیں۔ پھر لمم میں اور کیا آتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ایکسیپشن اس کی دی ہے نا، اس لیے اس کو ذرا دھیان سے نوٹ کریں۔ لمحہ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان مثلا ہے زنا کے قریب گیا، لیکن اس کو ڈر آ گیا اللہ کا اور وہ پلٹ آیا۔ چوری کے قریب گیا لیکن چوری نہیں کی،
اللہ کے خوف سے پیچھے ہٹ گیا. شراب پینے کے قریب تھا لیکن پی نہیں, توبہ کر لی تو یہ لمحہ میں. ایسے گناہوں کو اللہ تعالیٰ, جتنے بھی لمحے میں نے آپ کو بتائے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. کیسے؟ کہ جیسے دو نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے کہ اس بندے نے توبہ کر لیا, یا وہ اس نے اصرار نہیں کیا, ایک دفعہ اسے ہو گیا, یا وہ اللہ سے ڈر گیا, یا اس طرح کی, یا اس نے عادت نہیں تھی کبھی, ایک دفعہ اسے ایسے بات ہو گئی, تو یہ گناہ اس کے اندر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ انسان ہے, اس سے تو کوئی چیز تو ہو ہی جائے گی, ایسے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو, کتنا بھی بڑا ہو, چاہے کوئی بڑا ہی نیک سے نیک ہو, بڑا ہی بہت ہی متقی پرہیزگار ہو, پھر بھی اس سے کوئی ہو جاتا ہے, کوئی خطا سے پاک نہیں ہے, پیغمبر ہے, معصوم, ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. اس کے علاوہ تو سب انسان ہی ہے نا, پیغمبر بھی انسان ہے لیکن اللہ کی پروٹیکشن ہے ان کو, لیکن ان کے علاوہ کسی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی کبیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے, وہ جو ویل جن کے اوپر بتایا گیا وہ گناہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب کیا کرے, وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے بیٹھ جائے, ڈپریس ہو جائے؟ نہیں, انا ربک واسع المغفرہ, اللہ تعالیٰ بڑی وسیع مغفرت والا ہے, ابھی بھی معافی مانگ لے. اللہ کی مغفرت اتنی بڑی ہے کہ اگر آسمان تک بھی کسی کے گناہ چلے جائیں اور اس کو اب پریشانی ہوگی کہ اللہ نہیں پتا تھا, یا اللہ پتا تھا بھی میرے سے ہو گئے, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, سچے دل سے توبہ کرے گا, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. وہ بڑا وسیع مغفرت والا ہے, اس کی مغفرت نے ہر شے کو گھیرے ہوا ہے. یعنی آپ سوچ لیں نا, آسمان تک بھی گناہ چلے جائیں, زمین بھی بھر جائے گناہوں سے, پھر بھی اللہ کی مغفرت کتنی بڑی ہے. کوئی یہ نہ کہے اب میری تو معافی ہو نہیں سکتی, میں تو اتنے عرصے سے یہ ایسے کر رہا تھا, نہیں, تب بھی کہے کہ میرے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو جائیں, اللہ کی مغفرت سے زیادہ بڑے نہیں ہو سکتے. اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے, وہ ڈھانپ لیتی ہے گناہوں کو, بشرطے کہ انسان پچھتائے تو صحیح, ندامت تو کرے, ڈھیٹ تو نہ بن کے ہو کے بیٹھے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, یہ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں, چھوڑو ان کی باتوں کو, یہ نہ کرے, معمولی نہ سمجھے ان کو, میں نے کون سا اتنا بڑا گناہ کر دیا, تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں نے, بہت لوگوں کو دیکھو آج کل کتنے کر رہے ہیں, میں نے کون سا ایسا کام کر دیا, یہ بھی اس کو معمولی سمجھنا ہے, حقیر سمجھنا ہے. تم دیکھ نہیں رہے کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے, اس رب کی جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں, کبھی یہ بڑے بڑے بول نہ منہ سے نکالیں, کبھی ڈھیٹ نہ ہو جائے کہ اچھا آج توبہ کر لیتی ہوں, کوئی بات نہیں, پھر بعد میں کبھی ہوگا تو کر لوں گی, آج تو توبہ کروں نا, نہیں, جب توبہ کرنے لگے تو سچے دل سے کریں کہ اب کبھی نہیں کرنا. اگر ہو جاتا ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن آج سچے دل سے توبہ کریں کہ نہیں کرنا, آج دل میں شک نہیں ہونا چاہیے, نہیں بعد میں بھی کر لوں گی, چلو اس میں بھی معافی مانگ لوں گی, نہیں. توبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ توبہ یہ نہیں ہوتی اچھا میں آج توبہ کر رہی ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے بس جو میں نے کیا. توبہ یہ ٹھیک ہے, یہ ون پارٹ آف توبہ ہے, لیکن توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر یہ اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ میں نہیں کروں گا اب دوبارہ, اللہ تو مجھے بچا کے رکھنا, میں خود نہیں بچ سکتی, یہ ہے توبہ. یہ نہیں کہ وہ کرتے بھی رہنا, ساتھ اللہ ہمیں معاف کر دے, یہ بھی کرتے رہنا. پھر انسان ایسی چیزوں سے اجتناب کرنے کو کہا گیا نا, یعنی ایسی جب انسان اجتناب کرے گا, قریب بھی نہیں جائے گا ان چیزوں کے, تو بچ ہی سکتا ہے نا پھر, لیکن جب قریب ان کے گھومتا رہے گا تو کسی دن ان میں گر پڑے گا. پھر ایسے دوست, ایسی مجلسیں, ایسی چیزیں, ایسی گیجٹس, یا ایسی چیزوں سے دور رہے جن سے اس کو لگتا ہے کہ میں یہاں پہ کنٹرول نہیں کر پاتی اپنے آپ کو, جب میں یہ چیز پکڑوں گی یا یہ چیز دیکھوں گی یا یہ میں ریموٹ اٹھاؤں گی یا یہ میں کروں گی یا کمپیوٹر پہ فلاں ویب سائٹ پہ جاؤں گی تو میں نے پھر کچھ کر ہی لینا, تو پھر ایسی چیزوں سے دور رہے, خود کو خود بچا کے رکھے نا, کوئی اور تو نہیں ہمیں بچانے کے لیے آئے گا, کوئی اور تو ہمیں 24 آور نہیں واچ کر رہا, اللہ ہی کر رہا ہے نا.
तो हम बहुत सारे मौके होते हैं हम बिल्कुल अकेले हैं, बहुत सारे मौके किसी को कुछ नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। तो खुद के ऊपर खुद पहरे बिठाने हैं, तकवा यही तो होता है, खुद को खुद कंट्रोल करो, खुद के ऊपर खुद मुहाफिज बिठाओ कि नहीं मैंने अपने आप को ये नहीं करने देना, गलत है। तो तब फरमाया कि अल्लाह ताला बड़ी मगफिरत करने वाला है, बड़ा उसकी मगफिरत इतनी वसी है। हुआ आलम बिकुम इज अनशाकुम मिन अल अर्द, वो तो तुम्हें तब भी जानता था जब उसने तुम्हें पैदा किया था जमीन से, जब तुम कुछ भी नहीं थे, तुम अपने बाप की पुश्त में थे, तो तुम में से एक एक को तब भी जानता था। इंसान सोचता है ना यहां जाके गुनाह कर लूं, वहां जाके कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, अभी कर लेता हूं बाद में तौबा कर लूं, या अभी तौबा कर लेता हूं बाद में फिर कर लूंगा। अल्लाह को तुम्हारा सब कुछ पता है, तुम्हारी नीयतें क्या है, तुम्हारे ख्यालात क्या है, तुम कितने सिंसियर हो, तुम किस वक्त क्या कर रहे हो, वो आज से थोड़ी तुम्हें जानता है, वो तो तुम्हें तब से जानता है तुम जमीन में थे। तुम आज सोचते मैं अपनी मर्जी करता फिरूंगा, अल्लाह को कोई पता ही नहीं चलना, नऊज़ुबिल्ला, उसने कोई हिसाब लेना ही नहीं इसका, मैं जो मर्जी करती फिरूंगी यहाँ पे, अल्लाह को क्या पता, वो वहां पे इतने लोगों का हिसाब हो रहा होगा, रोले गोले में मेरा भी हो जाएगा और मैं भी जन्नत में सीधी एंटर हो जाऊंगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना, याद है आपको, आपने पढ़ा भाई, वलकद जितुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा। अब तो मुझे ट्रांसलेशन नहीं करनी चाहिए। अल्लाह अकबर, हम तुम्हें अकेले अकेले को लेकर आएंगे जैसे कि हमने तुम्हें अकेले पैदा किया था दुनिया में, अकेले ही पैदा हुए हो ना, कोई ट्विंस भी है तो वो भी मां के पेट में भी अलग अलग झिल्लियों में होता है, अलग अलग पैदा होता है, अकेले पैदा किया ना, इसी तरह अकेले तुम्हें अल्लाह के सामने खड़े होना है, इसको भूल ना जाना, हिसाब देना है। तुम सोचते हो तुम रात के अंधेरे में जो करोगे अल्लाह को नहीं पता चलेगा, अल्लाह को तुम्हारा सब पता है। और वह इज अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनी उम्महातिकुम, जब तुम अपने माओ के पेटों में थे ना तब भी उसको तुम्हारा पता था, तब भी वो तुम्हें जानता था। अच्छा क्या होता है इंसान का, इंसान जब वो जनीन होता है, जनीन जिस वक्त इंसान बनना शुरू होता है, क्या है वो उस वक्त, आप देखिए ना कोई शक्लो सूरत, ना कोई हड्डियां, ना कोई कुछ, एक बोटी सी है, खून का लोथड़ा सा है, वो तो माँ को भी नहीं पता होता, और तुम्हें तो खुद तो अपनी कोई होश ही नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं कुछ पता था। अल्लाह को तो तुम्हारा तब भी पता था, ये तुम्हारे पर मरहले गुजर रहे हैं, किस वक्त तुम्हारी नाक बनी, तुम्हारा नाखून बना, तुम्हारा बाल बना, तुम्हारा दिल बना, तुम्हारे गुर्दे बने, अल्लाह को तब भी तुम्हारा पता है तुम किन किन मरहलों से गुजर रहे हो, माँ नहीं देख रही इस वक्त, तुम्हारी खुराक मिल रही है कि नहीं, तुम्हारी हिफाजत है कि नहीं, सब जानता है वो। उसको तब भी तुम्हारा पता जब तुम जमीन में थे, मैंने क्या थे तुम उस वक्त, जमीन में से ही सारे निकले हैं ना, नुतफा भी तो यहीं से आदमी खुराक खाता है, उसे ही नुतफा बनता है, उससे ही कोई इंसान पैदा होता है, तो अल्लाह को उस वक्त भी तुम्हारा पता था। और जब तुम माँ के पेट में यानी कुछ चीज नहीं थे उस वक्त भी तुम्हारा पता था। सुभान अल्लाह, इंसान को अल्लाह ने बेबस कर दिया, इंसान अब बोले तो बोले क्या, अभी तो तुमने बनना भी नहीं शुरू किया था, तुम तब भी वो तुम्हें जानता था। अल्लाह अकबर। इमाम मकौल जो थे वो बहुत बड़े इमाम है, उन्होंने बड़ी प्यारी एक बात कही जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस आयत की शरह में तशरीह जो उन्होंने लिखी ना, तो कहते हैं हम अपनी माओं के पेटों में जनीन की सूरत में थे, हम में से कोई गिर गया, जो भी गिर गया, यानी कोई जनीन होता है ना कि वो माँ के पेट में ही जाया हो गया, खत्म हो गया, लेकिन हम उन लोगों में से थे जो बच गए, हमारी खलकत पूरी हो गई, फिर हम दूध पीने वाले बच्चे बन गए, हम में से कोई उस हालत में हलाक हो गया, लेकिन हम उनमें से थे जो बाकी बच गए, यानी आपको पता है बचपन में भी कई बच्चे मर जाते, फिर हम नौजवान बन गए, हम में से कई ऐसे नौजवान थे जो हलाक हो गए, लेकिन हम उनमें से थे जो बाकी बच गए, फिर हम और जवान हुए, हमारी उम्र बढ़ती गई, उधेड़ उम्र हो गए, बूढ़े हो गए, फिर हम बूढ़े हो गए, उधेड़ उम्र हो गए, हम में से कुछ ऐसे थे जो हलाक हो गए, लेकिन हम बाकी बचने वालों में रह गए, उधेड़ उम्री में भी कोई 50 का 60 का होके वो भी मर जाता है,
कोई ये इनकी जरा लंबी उम्र थी तो कहते हैं कि हम उनमें भी हम बूढ़े हो गए। अब फिर कहते हैं तेरा बाप ना हो, यानी अपने आप को कह रहे हैं अब तुझे किस बात का इंतजार है, समझ आई बात या नहीं? यानी बूढ़े हो गए हैं, इतना बचते बचाते, देखे ना कोई तो जनीन था उसमें ही खत्म हो गया, कोई बच्चा था उसमें खत्म हो गया, कोई जवानी में खत्म हो गया, कोई उधेड़ उम्री में खत्म हो गया, हम तो बुढ़ापे तक पहुंच गए, इतने सारे मरहले हमें बचते बचाते हम यहां तक पहुंच गए, क्या फिर अभी भी नहीं वो वक्त आया, अभी भी जागने का मौका नहीं आया, अभी भी तौबा का मौका नहीं आया, अभी भी अल्लाह की तरफ लौ लगाने का मौका नहीं आया, तो कब आएगा? सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है कि जब कोई यानी 40-50 से भी ऊपर हो जाता है और फिर भी उसके शौक, उसकी जौक, उसकी सोच, उसकी सारी जो अट्रैक्शन है वो बस दुनिया की तरफ ही होती है, वो तब भी अपना वक्त जाया करता रहता है, उसकी तब भी दौड़ दुनिया में ही होती है, उसको तब भी ये ख्याल नहीं होता कि अब मैं थोड़ी अपनी तैयारी शुरू करूं कि अब आगे का वक्त है। कब्र में पैर होते हैं, यानी इंसान इस बुढ़ापे तक भी पहुंच जाता है लेकिन फिर भी वक्त जाया कर रहा है, ऐसे ही जैसे कि उसको और 100 साल मिले में, 100 साल मिले में हैं जो कि उसने अभी गुजारने हैं, या उसको किसी को भी ये नहीं पता कि आज रात मेरी जमीन के ऊपर होगी या जमीन के नीचे होगी, कोई नहीं ये जानता हम में से कि आज मैंने सूरज चढ़ते हुए तो देखा है, गरूब होते हुए देखूंगी कि नहीं, कोई नहीं जानता। फिर कितनी गारंटीज हैं और एक बूढ़े की कितनी गारंटी है, लेकिन आज बूढ़े हो या जवान सब की दौड़ एक ही तरफ है, सबके शौक एक ही हैं, कोई उम्र इंसान को ज्यादा अल्लाह वाला नहीं बना देती, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता, अगर इंसान का वाकई अल्लाह से ताल्लुक नहीं है और नहीं इधर को ध्यान वो लगाता तो उम्र बढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत बूढ़े भी देखे हैं जिनको कोई फर्क नहीं, वहीं के वहीं हैं जहां पे जवानी में थे, इल्ला माशाल्लाह किसी को अल्लाह तौफीक दे दे, उसी तरह वक्त जाया कर रहे हैं, उसी तरह अपना उनके उनकी एक्टिविटीज हैं, उनके मशगले वही हैं, और कहते हैं फखर से अभी तो मैं जवान हूं, यानी ये धोखा अपने आप को दिए चले जाते हैं, ऐसे ही बनते समाते हैं, वैसे ही रहते हैं जैसे जवान रहते हैं, और अपने आप को बताते जाते हैं अभी तो मैं जवान हूं, अभी जाने का टाइम थोड़ी है, मौत के फरिश्ते ने तो नहीं आके पूछना अभी तू जवान है कि बूढ़ा है। अगर हम में मुझे या आपको हम में से किसी को इस वक्त कह दिया जाए कि तुम्हारे पास नेक्स्ट 15 मिनट्स हैं, दैट्स इट, मैं और आप क्या करेंगे इस वक्त, बस 15 मिनट रह गए तुम्हारे, ये तो कोई कह दे ना 15 मिनट रह गए, मौत आती है ना तो वो 15 मिनट की भी मोहलत क्या, 1 मिनट की भी नहीं देती, 1 मिनट की भी नहीं देती, 15 मिनट तो दूर की बात है, उसने तो 1 मिनट पहले भी नहीं बताना कि मैं आ रही हूं। और फिर फरमाया फला तू जक्कू अनफुसकुम, ले जी हमारी सब की जो है ना इस वक्त जो ये जो यानी अल्लाह ताला को पता है ना इंसान क्या चीज है, तो वो सबकी वो छुपी भी जो अंदर चीज होती है ना उसको निकाल के बाहर लाए, फला तो जक्कू अनफुसकुम, अपनी बहुत पाकियां बयान करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत नेक हूं, हम तो बड़े ये हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, प्रचार करते जाना, उसको सबका पता है कि कौन कितना नेक है, हुआ आलम भी मन इतका, उसको पता है सब कितने नेक है, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है, तुम्हें ये ऐलानात करने की क्या जरूरत है, तुम्हें हर मजलिस में ये किस्से बताने की क्या जरूरत है जिससे लोगों को ये पता चले कि मैं नेक कितनी हूं, जिसको हम अपनी जुबान में पता नहीं आपको समझ आती या नहीं, कुछ लोगों तो आ जाएगी, जिसको कहते हैं हम सुनाइयां करना, ये सुनाइयां करने की क्या जरूरत है कि मैं बहुत नेक हूं, मेरे बच्चे बहुत नेक है, मेरा घराना बड़ा नेक है, हम तो सारे बड़े ही नेक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला फरमाते हैं मत बयान करो अपनी पाकियां, क्यों बयान करते हो, अल्लाह हम सबको माफ करे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। तो
इंसान की ये कमजोरी है कि जिस वक्त कोई नेकी कर लेता ना उसका दिल करता है सबको पता ही चल जाए। नहीं पता चल रहा तो मैं खुद बता देती हूँ कि देखो मैं कितनी नेक हूं, और फिर ऐसे अंदाज में बताना कि पता भी ना चले कि नेकी बयान हो रही है, लेकिन बस ये लोगों को सुनाई हो जाए कि मैं देखो कैसी पाक हूं। और इसके अंदर एक और आपका बताऊं, एक बात ध्यान से सुने, बाज दफा हम कमेंट्री बहुत करते हैं। अब वो कमेंट्री क्या होती है? लोगों की बुराइयों की। हाँ जी आजकल देखें जी लोग तो नमाज ही नहीं पढ़ते, देखें जी लोग तो ऐसा कर रहे हैं, देखें जी लोग तो ये कर रहे हैं, देखें जी लोग। ठीक है तबसरा कर सकते हैं अगर हमने कोई सोल्यूशन निकालना है, या इस तरह हम कोई मसला ना कि किसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर कि हम किस तरह इसका हल देखें, क्या हम करें उसके ऊपर बात, लेकिन या एजुकेट करना है लोगों को या कुछ, वो तो एक सम। लेकिन करते करते बाज दफा हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हम उनकी बुराइयां बयान करके ऐसे लगने लगता है जैसे अपनी तारीफ कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। वो ऐसे करते हैं जी, वो ऐसे करते हैं, पता नहीं है आजकल लोगों को क्या हो गया, पता नहीं है। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं? देखो मैं कितनी अच्छी हूं ना। ऐसे जो लोग होते हैं ना अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने उसको तो माफ कर दिया और तुझे मैं पकड़ता हूं। अगर किसी का गुनाह मेंशन कर रहे हैं अपने आप को भी कहें अल्लाह मुझे भी हिदायत दे ना, हमारे से भी इतने हो जाते हैं, हम कोई पाक नहीं है। ये नहीं कि हर वक्त दूसरों की बुराइयां और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते जाना और अपना आप सोचते जाना कि हम तो बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं सूरह नूर में, अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, अल्लाह की रहमत ना होती तो तुम में से कोई एक भी नेक नहीं हो सकता था। सूरह नूर 21 आयत देखे, और सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 49 में कि आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो खुद को पाक कहते हैं, बल्कि अल्लाह है जिसको पाक करता है, खुद नहीं कोई पाक हो सकता। नहीं मेरा कोई खुद कमाल नहीं है, अगर मेरे से कोई नेकी हो गई है तो वो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, तो अल्लाह की तौफीक है। देखिए सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं वो नबी हैं, 13वां पारा जब हम खोलते हैं तो क्या है 13वें पारे की पहली आयत कि मैं अपने नफ्स को बरी नहीं कहता कि मैं तो बहुत वो हूं, नफ्स तो बुराई का हुक्म देता ही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें वो दुआ मांग रहे हैं अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को शिर्क से बचा लेना, वो नबी हैं दुआ मांग रहे हैं ना। हम अपने आप को पाक साफ ही समझते हैं, सबसे बड़ा नेक समझते हैं, हमारी औलादें भी नेक, हम भी नेक, हम पैदा ही नेक हुए, नस्लन ही नेक है, हमारे आबा भी नेक, हम तो सब नेकों की औलाद और हमारी औलादें भी नेक। कैसे हम ये सोच सकते हैं, कैसे हम ये बढ़ाइयां कर सकते हैं? और ये मैं किसी को वो नहीं कह रही, लेकिन हम बाज दफा ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं जो साफ तौर पे ये होती हैं कि मैं फखर कर रही हूं कि मैं नेक हूं, या मुझे कितना आता है, मुझे कितना पता है। अब मुझसे पूछ लेती ना मैं आपको बता देती, मुझे तो जितना पता है मुझे बताएं, मैं आपको बताती हूँ कौन सी कुरान की आयत कहाँ, मैं आपको बताती हूँ ये चीज कहाँ लिखी हुई, मैं आपको बताती हूं। तो खुद को नेक ना समझे, जो नेकियां कर रहा होता है उसको क्या ये गारंटी है कि इन नेकियों की कबूलियत हो गई है, क्या उसको ये गारंटी है कि इनमें इखलास पूरा पूरा था, क्या ये है? कौन हम में से कह सकता है कि हाँ मेरी तो नेकियां ऊपर चढ़ते ही बस ऊपर आसमान खुलते गए और फौरन ऊपर पहुंच गई और कबूल भी हो गई, कोई कह सकता? मुझे बताएं, मुझ समेत हम सब में से कोई कह सकता? अगर नहीं कह सकता तो फखर किस बात पे कर रहे, किस बात पे खुद को बड़ी चीज समझ रहे हो, किस बात पे बड़ाइयां कर रहे हो अपनी? बाज दफा हम देखें हम इससे धोखा खा जाते हैं, क्योंकि देखिए जब इंसान की कोई तारीफ करता है, इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूं हमेशा कि मेरी तारीफ ना किया करें, क्योंकि ये भी इससे भी मना किया गया। तो जक्कू अनफुसकुम में ना ये भी कहा गया कि अपने भाई की का भी ना तस्किया करो, उसको भी ना कहो कि ये बिल्कुल पाक है, यानी दूसरे की ऐसी तारीफें उसके मुंह पे करते जाना कि जैसे खुशामद करना। और अक्सर ऐसा होता है सबको नहीं कहती, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग आपकी मुंह पे तारीफें कर रहे होते हैं वही आपकी पीठ पीछे बुराइयां कर रहे होते हैं, वही आपके ऐब निकाल रहे होते हैं। वैसे इनके अंदर ये बात बड़ी गलत है, लेकिन जब उसके मुंह के ऊपर जाना तो उसकी तारीफ ऐसे करनी कि जैसे वो सोचे कि मैं तो पता नहीं सातवें आसमान पे हूं। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्या ये झूठ नहीं है? क्या ये धोखा नहीं है? क्या ये डबल फेस होना नहीं है? लेकिन खुशामदे बस तारीफें तारीफें, आपसे ज्यादा तो जबरदस्त कोई है नहीं। आप इतना अच्छा दर्श देती हैं कि आपसे अच्छा कोई दर्श ही नहीं देता। जैसे हम ये सोचते हैं आजकल, मुझे जैसे लगता है अल्लाह ताला माफ करे, कि जैसे किसी को उजरत देनी नहीं होती कि आपने किसी को पेमेंट करनी है, तो वही स्टेज पे हमने चढ़ना है तो हमने हर दुल्हन को कहना है कि इतनी खूबसूरत लग रही हो कि बस। ये एक हमारा तरीका है, हम सोचते हैं कि ये एटिकेट्स हैं। इसी तरह जो दर्स देने वाला होता है उसको हमने जरूर जाके ये कहना होता है आपने बड़ा अच्छा दर्स दिया, दिल में ही उतर गया बस, इतना अच्छा आपने दर्स दे दिया। अब क्या हम कर रहे हैं, वो दूसरा भी तो इंसान है, अगर उसके अंदर तकब्बुर आ गया, अगर उसके अंदर रियाकारी आ गई, अगर वो ऐसे को, तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। और बेड़ा गर्क करने वाले कौन है? जो ये लोग जो बस सोचते हैं कि तारीफ, और वही लोग जाके कहीं और बुराइयां कर रहे होते हैं। नहीं भी कर रहे हो तो फिर भी उनमें से बाज सच्चे होते हैं, और बाज तो ने तो सुना भी नहीं होता सही तरह से। अगर वाकई किसी की बात दिल में भी लग जाए तो तब भी उसने तो दर्स दिया हमें, हमारी इसके लिए कि हमारी इसलाह हो सके। अगर हमारे दिल पे लगती है तो हम अपनी इसलाह कर ले बजाय हम उसकी तारीफें करने के। और वो भी खुशी से फूला नहीं समाता। अब उसके बाद वो भी देखे ना, लोग तो मेरी इतनी तारीफ करते हैं, सब ने मेरे दर्स की इतनी को तारीफ की, ये हमें कहने की क्या जरूरत है? हम क्या इसमें नहीं बता रहे कि मैं कितनी जबरदस्त हूं? देखें ये जो हमारी जुबान के कलिमात है ना, एक कलिमा भी जहन्नुम में ले जा सकता है, एक कलिमा भी जन्नत तक भी ले जा सकता है। एक कलमा ही तो है जो काफिर को मोमिन बना देता है, और एक कलमा ही है जो इस्लाम से निकाल के इंसान को मुर्तद कर देता है। हदीस में नहीं आता, मैंने आपको कई दफा वो हदीस सुनाई है, एक कलमा ही इंसान बोलता तो अपनी इतनी नीचे जगह जहन्नुम में बना लेता जितनी आसमान और जमीन के दरमियान फासला। हम कितने कलमात मुंह से ऐसे बोलते रहते हैं जिसमें अपनी शेखियां और अपनी बड़ाइयां और अपने बच्चों की बड़ाइयां और अपने खानदान की बड़ाइयां और अपने शोहरों की बड़ाइयां और हमारा इमेज ऐसा बने कि बस हमसे ज्यादा जबरदस्त कोई है ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी ने दूसरे की तारीफ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफसोस है तुझ पर, तूने अपने भाई की गर्दन तोड़ दी है, यानी इतना तूने बुरा काम किया, क्योंकि वो उसका तो काम खराब हो जाएगा। वो अगर अपने आप को नेक समझने शुरू हो गया आज के वक्त के अंदर, आप सोचे ना कोई जरा सा करता है, हम उसके इतनी तारीफें आज वो उसी में फूला नहीं समझता, वो उसी में समझने शुरू हो जाता है कि मैं तो परफेक्ट हो गया हूं आज, अब मुझे तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। देखो सारी दुनिया कहती मैं नेक हूं, किसी से भी आप पूछ ले। अब धोखा है ना, धोखे में पड़ गया वो सोचता है कि अब मुझ और मैं क्या करूं, मैं तो इतना कुछ कर तो रही हूं, सारी दुनिया तो कह रही है मैं नेक हूं, और मैं क्या करूं? तो हमने उसको कहां पहुंचा दिया। देखे अगर तारीफ करनी है ना किसी की, उसकी पीठ पीछे करें, उसकी पीठ पीछे करें, पता चले कि भाई आपने उसकी तारीफ की है, पीठ पीछे तो हमें नहीं मौका होता, पीठ पीछे हमें उसकी सारी बुराइयां नजर आती, उसके अंदर प्रॉब्लम्स नजर आते हैं। आप देखें बादशाह जो होते थे उनके, आप अगर हिस्ट्री देखें तो उनके जवाल के ज्यादा मसले क्यों हुए कि जो उनका खुशामदी टोला होता है ना, वो खुशामदी कर करके, जी आपसे ज्यादा तो कोई है नहीं। आज भी जो सियासतदान है आप देख लें कि उनकी जो जिस पार्टी से, वो उनको इतना ऊपर करते हैं इतना कि वो समझने शुरू हो जाते हैं कि हम पता नहीं क्या चीज है, हमारे बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती। देखो तो हमें जाने कुर्बान करने को हमारे लिए तैयार हो गए, लोग ऐसे ऐसे नारे बना लेते हैं, वो उसी में खुशी से पागल हो जाते। अब उनको धोखा किसने दिया? इन्हीं तारीफों ने ना, फला तू जक्कू अनफुसा का, अनफुस से मुराद क्या है? अपना भाई, अपने भाई की भी जैसे पहले आया ना ला तख्तुलू अनफुसकुम, अपने नफ्सों को कतल ना करो, तो यानी अपने भाई को कतल ना करो, तो अनफुस से मुराद बाज दफा कुरान में ये भी आता है अपने भाई को, अपने भाई का भी तस्किया ना करो, खुद भी ना अपने आप को नेक समझो और ना ही अपने जो करीब के हैं उनको ऐसे करो कि उनको इतना बढ़ा चढ़ा के बता दो कि वो भी अपना सब छोड़ दें नेकी के काम को और एक धोखे में पड़ जाएं। बल्कि इवन यहां तक एहतियात की जरूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नाम रखने से भी मना फरमाया जिसमें अपनी पाकी और नेकी बयान हो रही हो। जैसे किसी ने नाम रखा बर्रा, बर्रा का मतलब नेक, तो आपने फरमाया कि नहीं ये नाम ना रखो। फरमाया तो उन्होंने पूछा कि या रसूल्लाह फिर हम क्या नाम रखें इस लड़की का? फरमाया ज़ैनब रख दो। सोचे ऐसे नाम भी ना रखो, तो नाम रखना को मना किया गया तो कहां ये कि हम खुद मुंह से बोल बोल के बताएं कि हम कितने अच्छे हैं। तो आज से कम अज कम हम ये तो करें कि अपनी तारीफें बंद कर दें, अपने गुण गाना बंद कर दें। तारीफ करनी तो अल्लाह की करें, उसके रसूल की करें, सहाबा कराम की करें, वो तो तारीफों के काबिल हैं। हमारे जैसे कैसे तारीफों के काबिल हो गए? या हम अपनी किसी बात की भी, अपनी किसी चीज की भी तारीफ मत करें, चाहे अपने बोलने की, चाहे अपने किसी तरह के उसकी के बस मैं ऐसे, मैं ये, मैं वो, मैं फलां, मैं फलां, मैं क्या चीज हूं, क्या चीज है मैं? इस मैं का तो पता चलेगा जिस दिन अल्लाह के सामने ये मैं खड़ी होगी ना, उस दिन पता चलेगा कि हमारे कच्चे छट्टे क्या थे। वो तो अल्लाह ने ढांपा हुआ, आज तो हम लोगों में बड़ाइयां करते फिर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला हमें एक्सपोज कर दे तो आप खुद ऑनेस्टली बताएं हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, फिर भी हमें शर्म नहीं आती कि हम अपनी बड़ाइयां करते फिरते हैं। अगर हम बहुत दीन का भी काम करते हैं तो उसके अंदर भी कोई ऐसी बड़ाई की जरूरत नहीं, उसके अंदर भी अपने आप को कुछ समझने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने तौफीक दे दी जो कर दिया, अल्लाह पता नहीं इसके पीछे अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे और मैं लोगों को बता रही हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत नेक हो गई। मैं तो खुद अपनी कोशिश में हूं कि जब मैं बताऊं तो इसके ऊपर मैं भी अमल करूं, सबसे पहले मेरे कान सुनते हैं। इसलिए नहीं कि मैं परफेक्ट हूं तो मैं लोगों के ऊपर भाषण दे रही हूं, नहीं। इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि अगर आज मुझे तौफीक मिल गई, मैं चंद वर्ड्स मुझे किसी ने कह दिए या बोले या मां बोले तो मैं कोई परफेक्ट हो गई, नो। हम किस चीज की अपनी बढ़ाई करें, किस चीज का अपना कहें। और तीसरी बात जो उलमा बड़ी जबरदस्त कहते हैं कि कोई कितना भी नेक हो उसको यही नहीं पता कि उसका खात्मा किस पे होना है, तो किस बात पे वो अकड़ता फिरता है। पता है हम सबको कि हमारा खात्मा किस पे होना है, हमें कलमा नसीब होना है कि नहीं, हमारे ईमान की उस वक्त क्या सिचुएशन होनी है। अल्लाह ताला माफ करे अल्लाह के हम ईमान वाले हैं या मुनाफिकीन में है कोई भी नहीं जानता। कितनी फिर शर्म की बात है कि हम अपने आप को क्या समझे हुए हों और अल्लाह के हाँ पता नहीं झूठों में लिखे हों या पता नहीं मुनाफिकीन अल्लाह माफ करे उनमें लिखे हों या किन में लिखे हों हमारे नाम। तो अल्लाह को पता है भाई जो नेक है, अल्लाह को पता है अच्छी तरह, तो मैं बताने की जरूरत नहीं है कि मैं नेक हूं इस चीज की बड़े प्रचार करने की जरूरत नहीं है। यही हमारे लिए तो आंखें खोलने के लिए काफी आयत है।